समग्र चेतना और ऊर्जा को भ्रुकुटी के मध्य में मैं अपना केंद्रित करती हूँ। देह के भव्य भार पर विराजमान मैं चेतना की वह तरंग हूं ज्योतिर्बिंद स्वरूप साक्षात स्वरूप मैं आत्मा स्वयं को अपने निज स्वरूप में स्थित करती हूँ। देह संपूर्ण अचल देह की सारी हलचल समाप्त हुई है। स्वयं को महसूस कर रही हूँ इस देह से संपूर्ण न्यारी देह से अलग मैं एक ज्योतिर्मयी आत्मा संपूर्ण मौन संपूर्ण स्थिर मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण कर चलती हूँ ऊपर आकाश में और ऊपर इस धरनी से पार तत्वों से पार सूक्ष्म वतन में हूँ। बाप दादा की वह शक्तिशाली दृष्टि अनुभव कर रहा हूँ। भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उसके वो अव्यक्त बोल याद की खुशबू वातावरण में फैलाने वाले जागती ज्योत भव भगवान का वरदान सदा याद की छत्र छाया में रहने वाले विजयी रत्न भव महादानी भाव रहम दिले भवा। ईश्वरीय वरदान पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हुई। उसकी दृष्टि से पवित्रतम किरणें निकल मुझ में समा रही है। सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ मैं आत्मा चलती हूं ऊपर निज वतन की ओर। यह निर्वाण धाम चमकता हुआ सितारा शिव बाबा को स्पर्श किया और पुनः मैं आत्मा अनंत शक्तियों को भरकर नीचे उतर रहे अपने फरिश्ते स्वरूप को फिर धारण किया और नीचे आ रहे हैं। नीचे देख रही हूं अपनी ही देह को छह शाखाओं वाले इस वृक्ष को और मेरी शक्तिशाली दृष्टि से एक एक कर विस्तार की शाखाएं हिसाब किताब की शाखाएं भस्म हो रही है और मैं फरिश्ता पुनः इस तन में प्रवेश करता हूं। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता सितारा मैं आत्मा पुनः इस देह के भान में आता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले सूफियों की एक कहानी है, वहां से आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। किसी एक गांव में, जिस गांव का नाम था ब्रह्मपुरी, एक युवक सत्य को पाना चाहता था। सत्य की प्यास उसे बेचैन किए हुए थी और उसने सोचा कि परम सत्य की यदि प्राप्ति करनी है तो यहां से बाहर जाना पड़ेगा। और इसी लक्ष्य के साथ वो एक लंबी तीर्थ यात्रा की तैयारी करता है और जाने से पहले उसी गांव के पास एक बूढ़ा सा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। सोचता है जाने से पहले इस व्यक्ति से पूछूं कि सत्य कहां मिलेगा। वो युवक संसार के प्रति वैराग्य भाव धारण किए हुए, ईश्वर प्राप्ति की एक ऐसी उत्कंठा लिए हुए उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे भगवान को पाना है, परम सत्य को जानना है, उस सत्ता को पहचानना है जिसे पाने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इसके लिए तुम्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी और वह मार्गदर्शक एक व्यक्ति होगा जो तुम्हारा गुरु होगा। युवक पूछता है वो गुरु कहाँ मिलेगा, वो गुरु कैसे दिखता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति होगा मुझसे लगभग 30 वर्ष उम्र उसकी ज्यादा होगी, वो एक तुम्हारा जो गुरु होगा वो ऐसे एक वृक्ष के नीचे बैठा होगा, उसके ऐसे ऐसे पत्ते होंगे, ऐसे ऐसे फल होगा और ऐसे ऐसे उस वृक्ष का रंग होगा, और वो बूढ़ा व्यक्ति जो होगा ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए होगा। तो जैसे ही तुम उस वृक्ष को देखोगे और उस बूढ़े व्यक्ति को देखोगे, समझ लेना कि बस यही वो व्यक्ति है जो तुम्हारा गुरु बनेगा। वो युवक इतना आतुर हो जाता है ये सुनकर कि अभी उसे पूरी बात भी नहीं सुननी है, और वो निकल पड़ता है उस सत्य को पाने के लिए और उस गुरु की भी खोज के लिए। निकलता है एक लंबी यात्रा, परंतु यात्रा में कुछ कुछ चीजें हो जाती है। जैसे ही आगे बढ़ता है कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने आती है, कुछ ऐसे ही उसके संस्कार प्रकट होने लगते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। संसार के लोगों को देखकर मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो लोग उसकी निंदा और कुछ गिलानी करते हैं तो अहंकार भी प्रकट होता है। वो सब कुछ उसके सामने आता है जो उसने कभी सोचा नहीं था, परंतु उसे पता चलता है कि ये भी मेरे ही स्वभाव का हिस्सा है। कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी चिड़चिड़ापन, क्योंकि संसार के लोग उसके ऊपर बहुत ताना कसते हैं। कहते हैं कि युवक है, काम धंधा छोड़कर निकल पड़ा है व्यर्थ में। कुछ साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं और आगे बढ़ता है। इतना साल तक, इतने साल तक संसार में रहने के बाद में पता चलता है कोई साथी चाहिए, किसी की आवश्यकता है। कब तक इस तरह अकेला ही जीऊंगा, कब तक इस तरह खुद भोजन बनाऊंगा, कोई साथी मिल जाए तो साथी भी ढूंढ लेता है, परंतु दुर्भाग्य धोखा हो जाता है। वह स्त्री भाग जाती है उसको छोड़कर, फिर किसी को चाचा बनाता है, किसी को काका, किसी को मामा, सोचता है कोई तो चाहिए, परंतु क्रमशः सबसे कोई ना कोई धोखा प्राप्त होता है। कुछ साल इसमें बीतते हैं, फिर आगे बढ़ता है, मन में उत्पन्न होता है घर तो हो, कब तक इस तरह खाना बदोश घूमता रहूंगा वैगाबॉन्ड की तरह। घर बनाता है, पैसे भी तो चाहिए, वस्तुएं भी तो चाहिए, साधन भी तो चाहिए, सब तो चाहिए, एक एक करके सब एकत्र करता है, परंतु वह सुख हो जाता है, सोचता है ये करने थोड़ी निकला था, खोज तो गुरु की थी। और फिर से मन सत्संग में लगाता है, फिर से गुरुओं की तलाश में निकलता है, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, परंतु किसी भी गुरु के पास कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करता है, कहीं पर कुछ भी हाथ नहीं आता है। और इस यात्रा के दरमियान थोड़े बहुत पाप कर्म भी हो जाते हैं, और वो पाप भी स्वप्न में आके सताते हैं, वो विकर्म भी सताते हैं, वो दुष्कर्म भी उसे सोने नहीं देते। सोचता है अब क्या करूं, करते करते 30 वर्ष गुजर जाते हैं, बीमारियां आती है, बड़ी बड़ी बीमारियां, वेदना, दर्द, दुख, पीड़ा, सब कुछ सहन करता है और फिर अंततोगत वह सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इससे तो मैं अपने गांव में ही ठीक था, अपने घर में ही ठीक था, और इसी संकल्प के साथ सोचता है ये जीवन तो जैसे व्यर्थ गया, अब मुझे वापस वही यात्रा करनी है जहां से मैं आया था। और वहीं पहुंचता है अपने गांव के पास तो देखता है कि वही व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है, उस पेड़ के नीचे बैठा है और समीप आकर देखता ये तो वही व्यक्ति है जिसका जिसकी मुझे तलाश थी, यही पेड़ है, यही पत्ते हैं, यही फल है। और उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है क्या आप वही हो जो मुझे 30 साल पहले मिले थे? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं वही हूं। क्या आपने उसी सद्गुरु की बात की थी जो आप खुद हो? वो कहता हाँ मैं वही हूं। तो आपने मुझे तब क्यों नहीं बता दिया? तो गुरु कहता है आपने मेरे जीवन के 30 वर्ष बर्बाद कर दिए, तभी बता देना चाहिए था, तो इतनी बड़ी लंबी यात्रा में मैं निकलता ही नहीं था। गुरु कहता है मैंने तुम्हें बताया तो था, तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। ये वही झाड़ है, ये वही पत्ते हैं, फल भी वही लगे हुए हैं और मैं भी वही बैठा हूं, और समय मैंने तुम्हें और तुम्हारा बर्बाद नहीं किया, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आ जाओगे, कल आओगे, अब आओगे, तब आओगे, आज आए हो और कहां फंस गए हो? आवाज से परे रहने वाला बाप, आवाज से परे रहने वाला बाप कहां आया है? आवाज की दुनिया में किस लिए आया है? आवाज से परे ले जाने आया है। कैसे ले जाने आया है? आवाज द्वारा। क्यों आया है? आवाज से परे ले जाने। क्यों आवाज से परे जाना है? क्योंकि विस्तार में खो गए हैं। विस्तार का ऐसा एक वृक्ष निर्माण हुआ है कि जिसमें आत्मा बंध गई है, उन सभी बंधनों से छुड़ाने के लिए, उन सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए, फिर से अपने उसी आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए और फिर से उसी घर। आवाज से परे जो है निर्वाण जो है, निस्वर जहां है, निःशब्द वहां है, कोई ध्वनि वहां नहीं, ऐसी निस्तब्धता में ले जाने, उस साउंड से परे, उस स्पीच से परे, उस स्वर से परे, निस्वर स्थान में ले जाने, वह आया है। कौन किसका इंतजार कर रहा था? वो हमारा या हम उसका? दोनों एक दूसरे का। तो बाप आए हैं सभी आत्माओं को फिर ले जाने। रिटर्न जर्नी का ये समय है, क्योंकि दुखी हो गए हैं, क्योंकि अशांत हो गए हैं, क्योंकि संसार की हालत ऐसी हो गई है कि अब संपूर्ण परिवर्तन सृष्टि का ही इसे बदल सकता है। तो आज की मुरली में बाबा ने आत्माएं कैसे विस्तार में चली गई है ऐसा एक दृश्य आंखों के सामने रखा है, जैसे यहाँ पर चित्र दिखाया है जो निखिलेश भाई ने जी ने निकाला है। एक वृक्ष है जिसकी 6 शाखाएं हैं। इस वृक्ष का जो तना है वो मन देह है, बीज जो है वो आत्मा है। 6 शाखाओं वाला यह वृक्ष है। इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते बजाते आत्मा कहीं ना कहीं फंस गई है, उलझ गई है, विस्तार हो चुका है, फैलाव हो चुका है। उस फैलाव में आत्मा इस तरह फंस गई है कि अभी इस फैलाव से मुक्त करने स्वयं भगवान आया है। तो आज हम इस क्लास की शुरुआत या चर्चा इस वृक्ष से करेंगे। 6 शाखाएं हैं, छह विस्तार है। ये विस्तार का वृक्ष है, ट्री ऑफ एक्सपांशन, ट्री ऑफ अकाउंट्स, हिसाब किताब का वृक्ष है। जड़ झड़ी भूत हो चुका यह वृक्ष है, पुराना वृक्ष है। पहली शाखा देह का हिसाब या देह का भान, देह का अभिमान या देह का अहंकार, कुछ भी कह लो। इस वृक्ष की पहली जो शाखा है वो कौन सी कही बाबा ने? देह भान। उसमें माया के पांच रूप, स्थूल, फिर सूक्ष्म और कुछ रॉयल। जैसे वह युवक निकल पड़ा अपने घर से दूर, कभी क्रोध ने सताया, कभी अहंकार ने, कभी लोभ ने, कभी ईर्ष्या ने, कभी द्वेष ने, जब तक अकेला था घर में कुछ नहीं था, जैसे ही आत्माओं के संपर्क में आया, संसार में उतरा, सब कुछ चालू हो गया। फैलाव, विस्तार, एक नई शाखा देहभान की निकली जो पहले नहीं थी, और उस शाखा का इतना फैलाव, एक एक डाली, एक एक डाली, उसका और विस्तार होता गया और आत्मा उसमें फंस गई। इस पर आगे और चर्चा करेंगे कि देहभान इसी की लड़ाई है। माँ घर आती है और अपने छोटे बच्चों से कहती है, दो बच्चों से, तुम लोग फिर से लड़ना चालू कर दिए। बच्चा कहता है, नहीं माँ, ये वही पहली वाली लड़ाई है। वही पहली वाली लड़ाई अब भी जारी है। कौन सी? देह आत्मा, देह आत्मा, देह नहीं आत्मा, वही पहली वाली लड़ाई। जिस दिन कोर्स किया था तब पता चला था, क्या? देह नहीं आत्मा हूं। साल गुजर गए, हजारों को कोर्स करा दिया, सर्व प्रकार की सेवा कर ली, परंतु लड़ाई अभी वही जारी है। नहीं मम्मी, नहीं पापा, ये वही पहली वाली लड़ाई है। तो पहली शाखा है देह भान की, देह अभिमान की, देह अहंकार की। दूसरी शाखा है संबंधों की। संबंध बनाए, सोचा सुख पाएंगे, सोचा कोई मिल जाए तो साथ साथ चलेंगे, सोचा इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, परंतु कलयुग के सारे ही संबंध कैसे हैं? बंधन। शुरुआत किन भावनाओं से की थी और कौन सी उमंगे थी और कौन कौन बना, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई बेटी, परंतु सर्व संबंधों से कहीं ना कहीं दुख का अनुभव हुआ। उस युवक ने जाना कि सभी संबंधों में दुख है और संबंधों को छोड़ा, और फिर तलाश की वस्तुओं की। तो तीसरी शाखा कौन सी है? देह के पदार्थ। क्या संसार के सारे पदार्थ मनुष्य को सुखी कर सकता है? अगर ऐसा होता तो पाश्चात्य जगत में सब कुछ है, वहां का व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता, परंतु सबसे ज्यादा दुख भी वही है। सब कुछ होते हुए भी दुख, सारी सुख, सारे सुख के साधन, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, परंतु कोई भी सुख नहीं दे पाया। स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या वास्तव में जिन वस्तुओं के पीछे मैं भाग रहा हूं, क्या जीवन के परम सुख तक वो पहुंचाएगी? ये कैसी दौड़ है, कहां चित्त भाग रहा है, क्या उसकी खोज है। क्या संसार के सारे सुख मिल जाए तो संतुष्ट होगी या आत्मा वैसे ही अतृप्त रह जाएगी। पद, प्रशंसा, सब कुछ मिल जाए संसार का, फिर भी एक वैक्यूम, स्पिरिचुअल वैक्यूम हमेशा रहेगा, क्योंकि जब तक आत्मा स्वसत्ता को नहीं जानती तब तक दुखी ही रहेगी। तो तीसरी शाखा है पदार्थों की, वस्तुओं की। बंधनी शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, आत्मा जैसे बंधायमान हो गई है इन सभी चीजों में। चौथी शाखा कौन सी है? भक्ति मार्ग की शाखा और गुरुओं की शाखा। जो जो माताएं यहां बैठी है, गुरु के पास अब भी कौन कौन जाती है वो हाथ खड़ा करो। शिवाचार्य नहीं, संसार के गुरु जाती है कोई कोई, या मंदिरों में सेवार्थ नहीं, पूजा पाठ करने थोड़ा सा चुपके से, किसी ने देखा नहीं तो भक्ति मार्ग का विस्तार, भक्ति मार्ग की शाखा है, गुरुओं की शाखा है। आज इसकी शरण, कल उसकी शरण, आज ये अनुष्ठान कल वो अनुष्ठान, आज ये व्रत कल वो व्रत, आज ये तीर्थयात्रा कल वो तीर्थयात्रा, यही तो किया इतने जन्म। ऐसी ही तो भक्ति करते रहे, और वो भक्ति भी कैसी झूठी थी, वो भक्ति भी कितनी स्वार्थपूर्ण थी। क्या निस्वार्थ भक्ति की थी? कभी की होगी द्वापर में। मम्मी अपने बेटे से कहती है, बेटा ये दो चवन्नी लो और एक चवन्नी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना। तो बच्चा बहुत खुश होता है, उछलता कूदता भागता मस्ती में जाता है, और जाते जाते एक चवन्नी सड़क पर गिरती है और फिसल कर नाली में चली जाती है। बच्चा कहता है, हनुमान जी अपनी चवन्नी ले लो। ऐसी हमारी भक्ति थी कि हे प्रभु, तुम तो सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, कहीं भी जा सकते हो, तो हनुमान जी घुस जाओ और भक्ति मार्ग की जंजीरें। यहां आने के बाद, भगवान का बनने के बाद भी वो संस्कार रहते हैं। पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ज्ञान में आने के बाद शिव बाबा की भक्ति करते हैं। बाबा क्या कर दो, क्या कर दो, बुद्धि का ताला खोल दो, पैसे दे दो, धन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बाबा से मांगते रहते हैं ना, वो भक्ति ही तो है। या फिर किसी को यहां पर गुरु बना देते हैं अपना, कुछ भी हुआ तो भागे उसके पास कि बताओ क्या करें, बाबा ने आपको ही निमित्त बनाया है, अब तुम ही बताओ। और हर बार उसी व्यक्ति के पास, और वो भी एक सूक्ष्म बंधन का रूप धारण करता है। इसके लिए किसी एक महापुरुष ने कहीं कहा है कि गुरु वह गुरु है वो कुछ समय के बाद अपने शिष्यों को छोड़ दे, नहीं तो वो खुद ही बाधा बन जाएगा अपने शिष्यों की उन्नति में। महात्मा बुद्ध ने कहीं कहा है अपने शिष्यों से, यदि रास्ते में मैं तुम्हें मिल जाऊं तो मेरी गर्दन काट देना, हो सकता है तुम मुझ में ही फंस जाओ। अपो दीपो भव, हे आनंद अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी पर भी निर्भर नहीं रहो। व्यक्तियों से जब शेयर करना चालू होता है तो परमात्मा से शेयर करना आप ही कम हो जाता है। व्यक्तियों से बात करना ज्यादा तो भगवान से बात करना कम, व्यक्तियों से व्हाट्सएप और व्यक्तियों को मैसेजेस ज्यादा तो तो भगवान से भी बातें कम। वो तो आने को तैयार है, वो दिखाए ना, कृष्ण भोजन कर रहे हैं, रुक्मिणी खिला रही है, और अचानक कृष्ण उठते बिना चप्पल पिए पहने भागे। रुक्मिणी कहती है चप्पल तो पहन के जाओ, वो कहता नहीं भक्त डेंजर में है, अभी जाना पड़ेगा, मेरा एक भक्त है रास्ते पर कहीं सड़क पर गुणगान करते हुए गोविंद गोविंद कहते हुए भाग रहा था, तो लोगों ने उसे पत्थर मारना चालू कर दिया, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वो असहाय है, असहाय भक्तों की रक्षा करना तो मैंने प्रण ले रखा है, न मैं भक्त्या प्रेष्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता, मुझे जाना ही है। और थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी देखती है भगवान वापस आ रहे है। वो कहते क्यों क्या हुआ गए नहीं? वो कहते मैं तो जा ही रहा था परंतु वो जो भक्त है खुद ही हाथ में पत्थर ले लिया और उनको मारने लगा है, अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है। समर्पण भाव अर्थात सब कुछ वही है, फिर किसी व्यक्ति का सहारा नहीं। सर्वसंबंध, और फिर यहां बात कर रहे थे गुरुओं की, तो इस परिवार में भी सहायता जरूर लो, सहयोग जरूर लो, परंतु बंधना नहीं है, फंसना नहीं है, डिटैचमेंट रहे उस संबंध में। पांचवी शाखा विकर्म, ज्ञान के बाद भी छोटे छोटे विकर्म, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी श्रीमत की अवहेलनाएं, उल्लंघन विकर्म के खाते में जमा होता है। श्रीमत को समझना क्या है, श्रीमत की गहराई में जाना, वो जो कह रहा है वह न करना, इसी को पाप कहा जाएगा संगम पर। अंतिम छठवां कर्म भोग, कर्म भोग को क्या कर देना है, कर्म योग बना देना है। कर्म भोग आएगा, बीमारी आएगी, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी जो कभी सोची नहीं थी, तैयार रहना है हर बीमारी के लिए, हर आपदा के लिए, हर मुसीबत के लिए। देह है, कुछ ना कुछ होगा, अब इन शाखाओं का करें क्या? राजीव भाई क्या करना है, शाखाओं का क्या करना है? बाप में, हाँ, बिंदु में समा दो, और क्या करना है शाखाओं का? एक शाखा काटी, एक संबंध तोड़ा, किसी से धोखा मिला, अभी किसी से संबंध नहीं रखेंगे, उससे संबंध नहीं रखेंगे, एक शाखा काट दी, दूसरा आएगा, सोचेंगे ये ठीक लग रहा है, ये दोस्ती करने लायक है, इसका स्वभाव उस जैसा नहीं है पहले वाले जैसा, ये थोड़ा ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा कैसा है। एक शाखा को काटो तो दूसरी शाखा आ जाती है, दूसरी के काटो तो फिर कुछ दिन के बाद और एक आ जाती है। तो करना क्या है, बीज को भस्म करना है। क्या करना है? बीज को भस्म करना है। चीन में एक बहुत महान कहो या एक व्यक्ति हुए थे माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने अपनी आत्मकथा में एक चीज लिखी है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था 8 साल, हर जगह पर उसने अपनी माँ के बारे में लिखा है, कई सारे वर्णन है, वो और उसकी माँ क्या क्या हुआ था उनके बीच। उसने लिखा था कि मेरी माँ जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका एक बगीचा था, बहुत सुंदर सा बगीचा, और वो एक बार बीमार पड़ गई। उसे बीमारी की इतनी चिंता नहीं थी, ना ही बुढ़ापे की, उसे चिंता थी उस बगीचे की। उस बगीचे में ऐसे ऐसे फूल थे, ऐसे ऐसे फूल जो दूर दूर लोगों को आकर्षित करते थे, और जो वो बीमार पड़ी तो दुखी हो गई, क्योंकि बगीचे की देखभाल कौन करेगा। माँ उससे ने लिखा कि माँ तू चिंता मत कर, मैं संभाल करूंगा, दिन रात मैं लगा रहूंगा इस बगीचे की संभाल करने में। और वास्तव में वो वैसे ही संभाल भी करता है, दिन रात लगा रहता है संभाल करने के लिए। एक मास के बाद माँ जब ठीक होती है तो देखती है कि सारा ही बगीचा कुंभला गया है, सारे ही फूल गिर गए हैं, सारा बगीचा सड़ सूख गया है। तो वो उसको कहती है, ये तुमने क्या किया? वो कहता है, मैं क्या करूं माँ। वो रोने लगता है, छोटा सा 8 साल का बालक, मैंने तो बहुत संभाल की। तो वो माँ कहती है, तुमने कैसे संभाल की? वो कहता है, सुबह से लेकर रात तक एक एक पत्ते को मैंने झाड़ा, सुबह से लेकर रात तक एक एक फूल को मैंने पानी दिया, एक एक फूल को मैंने चूमा, एक एक फूल से मैंने बहुत बहुत प्यार किया। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि एक मास के बाद सारे ही झाड़ सूख गए? माँ ने कहा, बेटा फूलों के प्राण कहाँ होते हैं? जड़ों में। यदि हाँ सारे ही फूल सूख जाए यह लक्ष्य है तो वही करना पड़ेगा जो माँ उससे ने किया। बीज को ही नष्ट यदि कर दिया जाए तो क्या होगा? सारा झाड़ सूख जाएगा। और ये जो वृक्ष बना है इधर, इसका बीज क्या है? देहभान। इसको किससे नष्ट करो? लगन की अग्नि से। सारी मुरली का बृद वाक्य कहो या एक शब्द कहो, सार रूप एक ही है, फायर ऑफ लव, लगन की अग्नि। ऐसी धधकती हुई अग्नि प्रज्वलित हो तब कहीं जाकर ये वृक्ष नष्ट होगा, नहीं तो ये वृक्ष बढ़ता ही जाएगा। नए नए विकर्म, नए नए गुरु, नए नए भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में नए नए कर्म भोग, नए नए संबंध, नए पदार्थ, नए देहभान के रूप जो कभी जाने नहीं थे पहले, ऐसा चिड़चिड़ापन जो पहले कभी नहीं था वो भी आएगा, ऐसी वासनाएं जो कभी न थी वो भी उत्पन्न होगी। बीज को भस्म करना है, कैसे करेंगे? लगन की अग्नि से। ऐसी अग्नि उत्पन्न करनी है अपने अंदर। अब इस अग्नि को उत्पन्न करने के लिए और 7 प्रकार की अग्नियां हैं जो सभी जानते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान की अग्नि प्रकट करनी पड़ेगी। सबसे पहले अंदर क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का प्रकाश। जहां ज्ञान का दैदीप्तमान प्रकाश है वहां अंधकार नहीं आ सकता। अंधकार तो आता तब है जब प्रकाश कम हो जाता है। जहां धधकता हुआ, जहां उगता हुआ सूर्य है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, सूर्य सदा ही उगा हुआ रहे तो अंधकार आ ही नहीं सकता। ज्ञान का जहां प्रकाश है, ज्ञान की जहां पराकाष्ठा है, ज्ञान का जहां चिंतन है, मनन है, अध्ययन है, पठन है, पाठन है, जहां ज्ञान ही ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, वहां ना व्यर्थ आ सकता है, ना तो नकारात्मक भाव आ सकते हैं, ना ही अंधकार। अज्ञान अंधकार है। अंधकार की परिभाषा है प्रकाश का अभाव, एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट इज नॉलेज। तो अपनी बुद्धि में क्या करना है? ज्ञान को समाना है, ज्ञान को इतना भर देना, इतना लबालब सागर के कंठे पर हो। पार्टी नंबर 2, अखूट अखंड, इतना सागर से भरे हुए हो, महादानी हो, इतना स्वयं को भर देना। तो सबसे पहली अग्नि जो लगन की अग्नि को प्रज्वलित करे वो कौन सी अग्नि है? ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की भट्टी करनी है। योग भट्टी के साथ साथ कौन सी भट्टी करनी है? ज्ञान की भट्टी करनी है। एक एक शब्द को समझना है। आवाज से परे रहने वाला आवाज की दुनिया में आता है, आवाज से परे ले जाने आता है, आवाज के द्वारा कैसे वो कार्य कर रहा है, आवाज के द्वारा कैसा वो आवाज होगा, और वो आवाज के द्वारा जो कार्य कर रहा है कैसे वो शब्द होंगे, एक एक शब्द में कैसी ऊर्जा, कैसी दिव्यता, कैसी पवित्रता, कैसा वो भाव होगा डिविनिटी का, उसको अनुभव करना, उसको पकड़ना, तो बुद्धि ज्ञान से भर जाएगी। तो पहली ज्ञान की अग्नि, दूसरी योग की अग्नि, याद की खुशबू, पार्टियों में बाबा ने कहा है याद की खुशबू, याद ही छत्र छाया है, विष्णु का जो चित्र है वो तुम्हारा है, शेष शैया पर है और शेष ही नाग ही क्या है, साफ ही छत्र छाया भी है, विकार जो है वो दुश्मन नहीं मित्र बन जाए, याद की छत्र छाया में रहते हैं, माया की छाया वहां आ नहीं सकती है। तो याद की छत्र छाया, याद योग, याद की अग्नि, अग्नि रूप धारण करे, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु नित उत दर्शन पासु, श्याम मने चाकर राखो जी। कैसी भक्ति थी मीरा की, कितना प्रेम मगन भाव था वो, अग्नि थी अग्नि, आग, ऐसी आग की आवश्यकता है, ईश्वरीय प्रेम की आग। कहते हैं भक्ति में तीन प्रकार की चीजें जब भगवान की ओर कर दी जाए तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक तो वही प्यार जो एक लोभी व्यक्ति को धन से है वो मिल जाए, वही प्यार जो एक विकारी व्यक्ति को देह से है वो उसके साथ मिल जाए, वही प्यार जो एक माँ को अपने बेटे से है, तीनों ही प्यार यदि ईश्वर की ओर डायरेक्ट कर दिए जाए तो वो नीचे उतर के आ जाएगा। परंतु संसार के लोग तो जार जार रोते हैं दुनिया वालों के लिए, भगवान के लिए रोने वाले कौन है, बहुत कम। प्रेम की अग्नि प्रकट करनी है, तीसरी अग्नि धारणाओं की शक्ति, धर्म सत्ता का आधार क्या है, अभी अभी मुरली चली थी, धारणाओं की शक्ति, वह पवित्रता की शक्ति, वह पवित्रता की आग अगर है तो प्रज्वलित करेगी लगन की अग्नि को। चौथा त्याग, पांचवा तप, तपस्या, साधना, तप, तापसी जीवन है ये, हम तपस्वी है ये भूलना नहीं है। हे ब्राह्मणों, आज के मुरली में महावाक्य है, इस पुराने हिसाब के वृक्ष को भस्म करो, बाबा ने कहा है, हे मालिक, चैतन्य कौन, मालिक कौन, हे ब्राह्मणों इस पुराने वृक्ष को भस्म करो, इसे भस्म करने के लिए उस तपस्या की ऊर्जा की आवश्यकता है। संसार की विलासिता में, संसार के भोग में हमारी तपस्या नष्ट न हो जाए, स्वयं के अंदर के तपस्वी को जगाओ, हे तपस्वी उत्थिष्ट जागृत, उठो जागो, तपस्वी सो न जाए, तपस्या। अगला सेवा, निस्वार्थ सेवा की लगन, निस्वार्थ निमित्त भाव वाली सेवा की अग्नि, ऐसी अग्नि जब प्रज्वलित होगी तो क्या होगा, फिर लगन की अग्न। और सातवा वैराग, विलासिता के इस दौड़ में वैराग कहीं दम ना तोड़ दे, अपने ही वैराग को फिर प्रज्वलित करके रखना है। सातों ही प्रकार की अग्नि चाहिए तो वो अग्नि प्रज्वलित होगी लगन की, अगर लगन की अग्नि है तो वो विस्तार नष्ट होगा, विस्तार नष्ट होगा तो आत्मा स्वयं बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकेगी। जो आत्मा बीज रूप स्थिति में स्थित है, बाबा ने मुरली में कहा है, बाप जो है वो केवल उन्हीं को ले जाएगा। सबसे पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथा त्याग, फिर तपस्या, फिर सेवा और अंतिम वैराग। ये सातों ही चीजों की साधना करनी है, सप्त साधना। फिर कुछ अनुभूतियां होगी, ऐसी एवर रेडी स्थिति होगी, ऐसी बाप समान स्थिति होगी, ऐसी बीज रूप स्थिति होगी तो कुछ अनुभूतियां होगी। पहली अनुभूति देह अलग मैं अलग, वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जाता है कि शरीर है उसमें उसको आत्मा है, परंतु यहां भारतीय संस्कृति क्या कहती है, आत्मा उसका यह शरीर, शरीर को मैंने धारण किया, शरीर ने मुझे धारण नहीं किया है, वस्त्र है, जब चाहूं तब यहां, जब चाहूं तब यहां से अलग, ऐसी साधना करनी है। अभी अभी यहां, अभी अभी वहां, अभी अभी स्तन से अलग, क्योंकि अलग होना नहीं, अलग है ही। क्या कहा बाबा ने, होना नहीं है, है ही। आत्मा अलग है, देह अलग है, सूखा नारियल और गीला नारियल, गीला नारियल से सूखा नारियल से, गीला नारियल से कहां तक चलना है, सूखा नारियल, ऐसे ऐसे बजाओ तो अलग अलग महसूस हो, वो अलग और वो अलग, ये अलग और वो अलग। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव केवल ज्ञान की रीति से नहीं, वो तो सभी जानते हैं कि आत्मा अलग चीज है और देह अलग चीज है, इसका यह प्रत्यक्ष अनुभव हो कि दोनों ही पृथक, दोनों ही सेपरेट, दोनों ही डिटैचमेंट है। ये डिटैचमेंट की अनुभूति करनी है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो पहला ये, दूसरी अनुभूति साक्षात्कार नहीं, साक्षात स्वरूप की अनुभूति। निश्चय से कह सकेंगे कि हमने आत्मा को देखा ही नहीं, केवल अनुभव किया है। अगर कोई स्विमिंग पर पीएचडी कर ले, स्विमिंग पर बहुत सारी डिग्रियां ले ले, स्विमिंग पर क्लासेस कराए, परंतु कभी पानी में गया ही नहीं है, स्विमिंग की हर बात उसे पता है, तो क्या कहेंगे? वो डिग्री उसको एक दिन डुबो देगी पानी में, पीएचडी की। इसलिए केवल थियोरी नहीं, सैद्धांतिक धर्म नहीं, व्यवहारिक धर्म, प्रैक्टिकल रिलीजन नहीं, प्रैक्टिकल रिलीजन, थियोरेटिकल रिलीजन नहीं, तो उस आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने के लिए लंबा समय या अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा हूं, लंबा समय एकांत, लंबा समय मौन, लंबा समय अंतर्मुक्ता की अवस्था, उसमें वो अनुभव होना चालू होता है, अन्यथा नहीं। तीसरा, बाप के साथ का अनुभव, अभी अभी यहां, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी मूल वतन, ये यात्रा करते रहना है, यहां से वहां, वहां से वहां, जैसे कोई द्वार है बीच में, ये द्वार खोला, बाबा ने कहा ना कमरे है, ये कमरा खोला उधर, वो कमरा खोला उधर, तीन फ्लोर, तो ये अभ्यास सभी को करना है। चौथा, चौथा कौन सा, उड़ता पंछी, उदाहरण दिया है, आवाज से परे रहने वाला आवाज में आता है, आवाज की दुनिया में आता है, आवाज द्वारा, यहां के उदाहरणों द्वारा, यहां की भाषा द्वारा, यहां की भाव और भावना द्वारा सबको आवाज से परे ले जा रहा है, यहां के उदाहरण चुनता है बाबा। कौन सा उदाहरण दिया, लाइट का, प्लेन का, ग्रेविटी से ऊपर, तो वैसे ही उड़ता पंछी अर्थात देह और प्रकृति के आकर्षण से परे और विकार की आकर्षण से परे, यह अनुभूति, चार अनुभूतियां हैं। कब होगी, जब ये छह शाखाएं नष्ट होगी और आत्मा बीज स्वरूप में स्थित हो जाएगी, तो उसको एक साथ ये सभी अनुभूतियां होने लगेगी कि मैं आत्मा हूं। थियरी नहीं, प्रैक्टिकल, साक्षात स्वरूप। वो साक्षात्कार अल्पकाल का है, ये सदाकाल का है। केवल एक छोटा सा भी संकल्प लिया जाए, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, छोटा सा संकल्प, पूरी योग की कमेंट्री उसके ऊपर हो सकती है और उसका अनुभव करना कि हां मैं ये हूं। देह अलग मैं अलग, देह अलग मैं अलग, इसका अभ्यास। इसके लिए थोड़ा सा इस देह को साधना होगा, कुछ तपस्या ऐसी करनी पड़ेगी कि जिससे यह देह भी वश में रहे। भोजन और नींद दो चीजें हैं, योगी जीवन अर्थात इन दो चीजों को सेट करना है। जिसका ये सेट नहीं हो पाता वो योगी जीवन भी सफल नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ होते रहता है और खींचते रहता है शरीर। तो ये चार अनुभूतियां। उसके बाद बाबा पार्टियों से मिले। सबसे पहली पार्टी में क्या कहा? याद एक क्या है, छत्र छाया बन जाए। भक्ति मार्ग के जितने चित्र हैं और जब भी हमारी दृष्टि उन पर जाए, क्या सोचना है, इनका ज्ञान से क्या संबंध है, ज्ञान के साथ में जोड़ना। यहां बाबा ने दो चित्र लिए, एक तो देवी का और दूसरा विष्णु का। क्या वैसी हमारी स्थिति है? तूफान आ रहा है, पानी है, परंतु अचल, अडोल, शांत, निश्चिंत अवस्था। विष्णु की स्थिति किसकी है? हमारी। दूसरा देवी का। कोई ना कोई राक्षस आते ही रहता है इस ज्ञान मार्ग में, एक जाता है तो दूसरा आता है, महिषासुर, चंड, वो शुंभ निशुंभ, अकासुर बकासुर, कितने सारे हैं, कंस, कभी रावण, कभी पूतना, कभी सूर्पनखा, कोई ना कोई बनकर आते ही रहता है। क्या करना है? शक्ति रूपी पाव से उसे दबा देना है, वो हम पर हावी न हो जाए, यह अभ्यास। दूसरी पार्टी से मुलाकात में क्या कहा बाबा ने? महादानी। बहुत सुंदर पांच बातें हैं यहां पर जो सभी को ध्यान में रखनी है। एक तो हम महादानी इसलिए क्योंकि हम संपन्न है, सागर के कंठे पर है, जैसा सागर है वैसे मैं हूं। क्योंकि हम संपन्न है इसीलिए हम रहम दिल भी है, जिसके लिए आत्माएं तड़प रही है, भटक रही है, रहम करो उनके ऊपर। जितना रहम दिल, जितनी वो जो भटकती हुई आत्मा है उनके प्रति रहम का भाव। तीसरा, अगर कोई न भी आए समझाने के बाद में तो क्या करना है, ये नहीं समझना ये ज्ञान कैसा है, अविनाशी है, इस ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, इसके लिए सेवाओं को बंद नहीं करना है। चौथा, बाप के खाते में तो फिर भी जमा ही होता है। और पांचवा प्रत्यक्ष फल है खुशी। सेवा की अभी नहीं आया, कभी ना कभी तो आएगा, एक मास के बाद आएगा बाबा ने कहा, पर आएगा जरूर, हट्टी एक ही है। इसके लिए बीज डाल देना है, बीज डाल देना है। लास्ट पार्टी से क्या कहा बाबा ने? वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। अभी जब सब आप मधुबन में आए हैं तो यहां से शक्ति भर के लेनी है, यहां से खुशबू ले जानी है और बिखेरनी है सेंटर पर, घर पर, सारे विश्व में। क्या बन जाए? जागती ज्योत, परवाने खिच खिच कर आएंगे, बुलाने की आवश्यकता ना हो। हमने देखा है जहां सेवा केंद्रों और घरों में बहुत अच्छी पवित्रता होती है, स्वतः ही सेवाएं होती है, तो योग की खुशबू और पवित्रता की खुशबू इसको बढ़ाना है। जितना बढ़ाएंगे स्वतः ही सेवा होगी। एक छोटी सी कहानी और फिर इस क्लास को पूरा करते हैं। आप सबको देखकर यहां पर बहुत खुशी होती है और एक बात हमको याद आती है कि एक व्यक्ति था जिसका एक बेटा जो था बीमार पड़ गया था और बहुत सारा इलाज कराया फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो एक ज्योतिषी ने कहा कि यह ठीक हो सकता है, परंतु एक शर्त है, स्वाति नक्षत्र होना चाहिए, स्वाति नक्षत्र होना चाहिए और बारिश उस समय होती रहे। उसमें किसी जंगल में यदि कोई मनुष्य की खोपड़ी है रखी हो और उसमें थोड़ा सा पानी हो और उस पानी पीने के लिए एक मेंढक वहां आ जाए और मेंढक का पीछा करते करते एक सांप वहां आ जाए और सांप मेंढक आगे चला जाए और सांप के मुंह से विष की बूंदे उस पानी में गिर जाए, वो पानी यदि तुम अपने बेटे को पिलाओगे तो वो ठीक हो सकता है। तो वो व्यक्ति फटाफट पंचांग खोलता है और खुश होता है ये पाकर कि आज ही स्वाति नक्षत्र है। प्रार्थना करता है बहुत आतुरता से, हे प्रभु मदद कर, आगे जाता है तो बारिश आने लगती है। जंगल में पहुंचता है तो देखता है सामने एक खोपड़ी रखी है, और ज्यादा खुश होता है और आतुरता से और तन्मयता से प्रभु की प्रार्थना करता है कि इतना सब तो तूने कर दिया, तेरे लिए क्या असंभव है। तो थोड़ी देर में देखता है एक मेंढक वहां आ जाता है और मेंढक का पीछे करते करते सांप भी वहां आ जाता है। सांप को मेंढक पकड़ना चाहता है, मेंढक उस खोपड़ी के ऊपर और आगे सरक जाता है, सांप के मुंह से बूंदे गिरती है उस पानी में और वो पानी लेके उसका बेटा ठीक हो जाता है। इतनी सारी अगर परमात्मा कृपा हो तो सारे योग अपने आप जुड़ने लगते हैं। मधुवन में आना बहुत सारी तपस्या चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो प्रभु की कृपा। वो हुई थी जा पर कृपा, राम की हुई ता पर कृपा सबकी हुई, अपने आप सारे योग जुड़ गए। तो आपका योग भी बहुत पावरफुल है तब तो यहां पहुंचे। जब इतने सारे योग जुड़ गए, टिकट भी मिल गई, जगह भी मिल गई, पहुंच भी गए, विरोध करने वाले चुप बैठे रहे या देखते रहे या सहयोगी बन गए। तो मधुबन में आना अर्थात एक बहुत बड़ी लॉटरी है। यहां आके स्वयं को, बाबा ने कहा ना सागर का खंटा अखूट अखंड है, ये स्वयं को सर्व शक्तियों से भरना है। वह सात सप्त अग्नि जो कहा उसको अपने हृदय में अगर बुझ गई है फिर से प्रकट करना है। अच्छा, ऐसे सदा साक्षात स्वरूप के अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे सदा विस्तार के वृक्ष को बिंदुवन बिंदु लगाने वाले सब विस्तार के वृक्ष को समाप्त कर बिंदुवन बिंदु लगाने वाले बिंदु बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी मूल वतन, अभी अभी कर्मयोगी के सदा अभ्यासी आत्माओं को, ऐसे सदा बाप समान, ऐसे सदा एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।